फिर आयत नंबर 21 में क्या है, कुरान करीम की शान, लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरायतहू खाशिया मुतसद्दिया मिन खशयतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे भी नाजिल कर देते तो तुम देखते कि वो कांप भी रहे, खशियत भी उसमें और मुतसद्दियन भी है। यानी अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो तुम उसको देखते कि वो कांप भी रहे और झुक रहे अल्लाह की खशियत से। ये कुरान कोई छोटी चीज़ नहीं है जो आप और मैं लेके बैठे हैं। सूरह अलअहज़ाब की आखिरी आयत में भी अल्लाह ने एक अमानत का तذکرہ किया था, इन्ना अरदना लअमानत, पहाड़ों पे अमानत पेश की, वो डर गए, उन्होंने कहा हम नहीं इसको पकड़ सकते। ये कुरान नबी के सीने पे उतरा, अल्लाह के नबी की जो कैफियत होती थी नज़ुले कुरान के मौके पे वो भी हम पीछे सुन चुके हैं। सूरह शूरा में वही की मुख्तलिफ कैफियत थी। आपका मेरा इस पे अमल क्या हो, इसको सीरियस लीजिए। कुरान की कोई एक आयत आपके अमल के खिलाफ आ रही है वो काम छोड़ दीजिए, कुरान की एक आयत आपको किसी नेकी की रग़बत दिला रही है फौरन ले लीजिए। कभी भी इसको लेट डाउन ना करें, और ज़िंदगी में जितनी भी आज तक किताबें पढ़ी और उसको अहमियत दी उससे ज़्यादा इस किताब को अहमियत दीजिए। फिर आखिरी वो तीन आयात जिसको अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों का गुलदस्ता भी कहा जा सकता है, आयत 22 से 24, हो अल्लाहुल्लज़ी से लेके अल अज़ीज़ुल हकीम। आप देखिए कि अल्लाह का एक नाम भी बड़ा होता है, कहाँ इतने खूबसूरत नाम, और हर एक नाम के ऊपर अलग से बात होती है। अमेज़ बाय अल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के नामों की सीरीज़, उसमें से एक एक नाम को सुन लीजिए, आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से बनता जाएगा। खूबसूरत पैगाम पे सूरत हशर पूरी हुई तो अगली सूरत मुमताहीना या मुमताहना भी कहते हैं इसको, इसकी पहली तीन आयात 1 से 3 अहले बातिल से हमदर्दी हक की राह से दूर करेगी। और ये सूरत अगर हम देखें तो इसमें टोटल 13 आयात है। एक ख़ास वाक़े में भी इसमें ताल्लुक़ है, लेकिन पहले इसको हम देख लेते हैं। पहली 3 आयात में क्या है कि बातिल वालों से हमदर्दी करने वाले असल में हक़ की राह से दूर हो रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। असल में एक खातिब बिन अबी बलता नाम के एक सहाबी थे, उनके बीवी बच्चे मक्का में रह गए थे और ये हिजरत करके मदीना में आ चुके थे। अल्लाह के नबी ने जब अहद शिकनी की बुनियाद पे मक्का की तरफ जाने का इरादा किया तो आपने इस बात को रास रखा था, किसी को नहीं बताया, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो और इसी तरह के कुछ और मामलात हों। अल्लाह ने वही के ज़रिए इनको खबर दे दी कि आपके एक सहाबी ने आपके निकलने की खबर मक्का वालों को दी है, और उसको एक ख़त में डालकर एक औरत है सारा नाम की उसके हाथ भेज दिया। अल्लाह के नबी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और एक दूसरे सहाबी को भेजा, फलां रोहा, रोहा का नाम आता है, उस मुकाम पे एक औरत मिलेगी ऊँटनी पे सवार, उसके पास ख़त लेकर आओ। हज़रत अली ने एड़ लगाई और चल पड़े। दूसरे साथी ने कहा कि ज़रा आहिस्ता चलो, हो सकता है औरत कहीं इधर उधर भी मिले। हज़रत अली ने फरमाया ये नहीं हो सकता, अगर नबी ने एक ख़ास मुकाम का नाम लिया है तो वो औरत वहीं मिलेगी। ये नबी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट था, और वाकई फिर वो औरत मिल गई। शुरू में उसने इनकार किया, बाद में गए बालों के अंदर मीढ़ियों में उसने ख़त गूंदा हुआ था। ख़त क्या था, वो तो एक किस्म की कह लीजिए कि जंगी राज अफशा करने वाली बात थी। ख़त नबी के पास आया, खातिब नबी बलता को बुलाया गया। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के नबी ये तो जंगी राज है, इनका सर कलम करे। कहा ना ना, ये बद्री साहबी है, तुम सुनाओ भाई क्या हुआ। कहा अल्लाह के नबी मैं मुर्तद नहीं हुआ, ना मैं आपका राज देना चाहता हूँ, मुझे पता है कि जीतना आपने ही है, चाहे मैं उनको पहले बता भी दूँ। ये भी एक ईमान का उनका एक खूबसूरत रंग था। मैंने तो उन पर एक एहसान किया, क्योंकि जब जंग होगी तो मक्का में खून खराबा होगा, तो मैं ये एहसान करके अपने उन बीवी बच्चों को बचाना चाहता था, कि चूँकि मैंने तो पहले ही कह दिया तो उनको हाथ ना लगाना। उस पर आयतें उतरी हैं, सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत चीज़ें। और इसीलिए फिर औलाद और माल और चीज़ों को फितना कहा जाता है, कई दफ़ा ये चीज़ें इंसान को अल्लाह के रास्ते से दूर कर देती हैं। कहा लन तनफाउकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामा, यानी इस्लाम को ख़तरे में डालकर बीवी बच्चों या शोहर बच्चों के ऊपर फोकस करना ये बहुत बड़ा जुर्म है, और अल्लाह ऐसी चीज़ों को खोल के रखेगा। इसकी अब अमली मिसाल हज़रत इब्राहिम की सूरत में आयत 4 से 6 में दी गई, कि जिसमें आपको एक बेहतरीन रोल मॉडल बनाकर पेश किया जा रहा है, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. کیوں ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں آ رہا ہے اس میں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سے تعلق جوڑتے تھے مکہ والے بھی، اور مکہ والے بت پرستی پہ آ چکے تھے، یعنی دین اسلام کو، دین ابراہیمی کو اتنا بگاڑا کہ ایک کی جگہ 313 خدا بن گئے. اور صفائی کرنا چھوڑ دیں آپ تو تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا گھر استبل بن جائے گا، بکھری چیزیں نہ اٹھائیں اور سو آن. ادھر یہی حال ہوا، دین اسلام بالکل چوچوم کا مربع بن چکا تھا. تو اللہ ان کو ابراہیم کی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی تو اپنی برادری سے باتیں کی تھی نا، اور ان کی بت پرستی پہ جو ہاتھ اٹھائے تھے، تو تمہیں بھی اس کی فکر کرنی ہے. آپ کے میرے لیے اس میں عمل کیا ہے؟ خاندان سے محبت بہت ضروری ہے، فیملی کو جوڑنا انتہائی اعلیٰ، ان کی خوشی غم میں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنا بہت اچھا. لیکن خاندان یا برادری یا فیملی کے نام پر نافرمانی کے کام کو اپنا لینا، اللہ کو ناراض کر دینا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. پھر آگے آیت 7 سے 9 میں عدل کے کچھ تقاضے ہیں. اس اللہ چل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودہ، امید ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے بیچ میں محبت ڈال دے، اور اللہ قادر ہے اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی کیا بتایا کہ آج کے دشمن کل کے دوست بن سکتے ہیں. تم نے ان لوگوں سے نفرت نہیں کرنی، ہاں ان کے غلط کام کو چھوڑ دینا، یہ عدل کا تقاضا ہے. پھر مشرکین کے ساتھ نکاح کی ممانعت ہے آیت 10 اور 11 میں. یا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب اے ایمان والو تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں، فامتحنوہن، ان کا امتحان لے لیا کرو. اصل میں صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط تھی کہ مسلمانوں کا کوئی شخص اگر سمجھیے کہ مرتد ہو جائے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر اپوزٹ وے ہوگا تو مسلمان واپس کریں گے. اب اس میں عورت اور مرد کے لفظ کی ڈسٹنگوشنس نہیں تھی، تو یہ آیات اس دور کی ہیں کہ جب مکہ سے کوئی عورت اسلام قبول کر کے مدینہ آتی، اب اللہ کے نبی ان عورتوں کو کیا کریں، ان سے بیعت لی جاتی تھی. یہ پوری ڈیٹیل آپ کو یہاں مل رہی ہے. شوہر پیچھے ہے، وہ کفر پہ ہے، عورت مسلمان ہو گئی. اب آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے تو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی، لیکن آج بھی غیر ملکوں میں جہاں لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، تو یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اول تو ان کے نکاح ہی نہیں ہوئے، بہت کم لوگ ہیں جو شادی کے بعد میاں بیوی بن کے رہتے ہیں نا، لیکن اگر عام حالات ہوں تو پھر یہ سارے حالات ہوتے ہیں. تو اس میں بہت خوبصورت طریقے سے یہ بتا دیا گیا کہ چاہے نکاح نان مسلمز کا ہوا ہے، اس کی بھی شرعی حیثیت ہے. یہاں یقین کریں، ان آیتوں کو پڑھ کر تو ایک عورت ہونے کے ناطے میں کہہ سکتی ہوں کہ اسلام سے زیادہ کوئی ایک عورت کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. اس کا حق مہر، اس کا حق مہر، ان کو دو. یہ جب آپ ڈیٹیل سے پڑھیں تو آپ جھوم جاتے ہیں، یہ کوئی صرف قرآن خانی میں پڑھنے لیے آیتیں تو نہیں ہیں. اور میں اکثر سوچتی ہوں اگر صرف قرآن ثواب کے لیے پڑھنا ہوتا، ان آیتوں کی کیا ضرورت تھی؟ بس سبحان اللہ ہوتا، بسم اللہ بسم اللہ ہوتا، پڑھتے جاتے اور کاؤنٹر چلتا جاتا. اور آج ہم نے یہی سمجھا، اسی لیے پھر آگے مومن عورت کے لیے ایک لائحہ عمل ہے آیت 12 میں. یہ تھے وہ سارے سٹیپس جو کسی کی بیعت میں اس سے اگلوائے جاتے تھے. شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کا قتل نہیں کرو گی، کوئی بہتان نہیں باندھو گی، اور کسی بھی معروف کام میں نافرمانی نہیں کرو گی. پھر اس پہ وہ بیعت کی جاتی تھی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 میں ان سے دوستی نہ کرو جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اس موضوع پہ بھی آپ دیکھیں تو وہی بات ہے جو سورت کے شروع میں تھی، وہی جملہ آخر میں، یعنی اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے محبت کم ہے. آپ خود دیکھیں نا، خاندانوں میں خدا نخواستہ ایک رشتہ ہو کے چھوٹ گیا، بھائی بہن نے رشتہ کیا ٹوٹ گیا، غم کیا ہوتا ہے پتہ؟ کہ گھر تو ٹوٹا ہے، بھائی بہن بھی روٹ جائیں گے. حالانکہ ہمیں اتنا پیار بھی کوئی نہیں ہوتا اپنے بھائی بہنوں سے. اب اس معیار کو اوپر لیجئے، جن کو اللہ سے محبت ہے، جو اللہ کو پیارے ہیں یا اللہ ان سے پیار کرتا ہے، کیا وہ اللہ کی نافرمانی کے کسی کام کو کرنے والے سے دوستی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست فرمائے. اس کا بھی تعلق الولا والبرا سے ہے. اس کے بعد ہے جی اگلی سورت صف. پیچھے ہم نے کیا کیا، 23ویں پارے میں ہم نے سورت صافات کی تھی، یہاں صف. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام آرگنائز دین ہے. صف بندی ڈسپلن کی علامت ہے. 14 आयत है, 14, पहली 3 आयत, क्यों कहते हो जो करते नहीं, लिमा तकुलून मा ला तफ़अलून, क्यों वो बातें कहते हो जो करते नहीं, कबूरा मक्तन इंदल्लाही अन तकुलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह को ये बात बड़ी बुरी लगती है कि इंसान वो करे जो कहता नहीं या जो कहता है वो करे ना। और देखा जाए तो ये बंदों को कहाँ अच्छा लगता है, कोई कहेगा मैं आपके घर आऊंगी और आई ना, कोई कहता है आप हमारे घर आ जाइए खाने पे, अब जाएं तो वो कहते हमने कब बुलाया, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो कॉल और फेल का तजाद बंदे को अल्लाह की निगाहों से भी और बंदों की निगाहों से हटाता है। हम सबको अपने किरदार में एक दफ़ा झांकना है, अपने गिरेबान में झांके, मेरी कौन सी चीज़ है जो दूसरों को इरिटेट करेगी, जो दूसरों को मुश्किल में डालेगी, या दूसरे मुझसे दूर होंगे, और अल्लाह से यहाँ बैठकर हम सब दुआ करें हमारी हर वो आदत ख़त्म कर दे जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का ज़रिया बनती हो। क्योंकि मोमिन तो दूसरे के लिए खैर का पैगाम देता है, इसीलिए फिर आगे मोमिन का बेहतरीन किरदार है आयत 4 में, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीन युकातिलून फी सबीली ही सफ़ा कन्नाउं बुनियानु मरसूस। इस पे हमारा एक पूरा कोर्स है, यही नाम है कोर्स का, बुनियानु मरसूस। ये भी टीम बिल्डिंग कोर्स है, हमने अटलांटा इंस्टीट्यूट से किया था। इस्लाम की इमारत में ईंट बन के लग जाओ, चाहे बुनियाद में, चाहे खिड़की का शीशा या किसी दरवाजे का हैंडल, तो बच जाओगे। दीन इस्लाम में वहदत बड़ी अहम है, इज्तमाईयत और वहदत। हर मोमिन अगर ईंट भी है ना, यदि आज भी इनफरादी तौर पे उम्मत मुस्लिमा में बहुत कीमती लोग हैं, तकवा में, वरा में, किरदार में, अखलाक में, हाफिज़े कुरान भी हैं, आलिम भी हैं, बास लोग इंसानी मामलात में बड़े खूबसूरत हैं, यानी कोई ये ना सोचिए कि इस वक्त का अख्तर रिजाल है, बहुत प्यारे लोग हैं उम्मत मुस्लिमा में, और ख़ास तौर पर जो दीन सीख और सिखा भी रहे हैं माशाल्लाह, उनकी तो कदर करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर उम्मत के ऊपर बहार क्यों नहीं आ रही, फिर उम्मत के दरख्त पे ही बहार क्यों नहीं आ रही, या एक उम्मत की इमारत बन के दुनिया में मुसलमान क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि ईंटें बिखरी हुई हैं। देखिए ना, ईंटें बहुत सी हों तो उसमें कोई रह सकता है, आप ईंटों को जोड़ के उसके अंदर जाते हैं, नहीं, हवा चलेगी गिर जाएंगी, बीच की वो उल्फत नहीं है। अल्लफ़ बैनकुम, पीछे हम सूरह आल इमरान में पढ़कर आए हैं, दो ईंटों को जोड़ने वाली चीज़ सीमेंट और वो मादा है जो घोल घाल के दोनों के बीच में रखा जाता है, वो ज़हन में लाइए। इस वक्त उम्मत को उस मोहब्बत भरे गारे की या उस सीमेंट की ज़रूरत है जो दो नेक लोगों को जोड़ दे, एक देने वाला है एक लेने वाला, उसको जोड़ दे, दोनों ही इस्लाम पे, दो मुसलमान हैं, एक हमसाए में रहने वाले को जोड़ दे, फिर आप देखिए कि इस्लाम कितना खूबसूरत है। और सहाबा के दौर में थोड़ी सी चीज़ों से, थोड़ी कोशिशों से ज़्यादा काम की हो गया, क्योंकि उनके दिलों में उल्फत थी, और अल्लाह जो उम्मत को जोड़ दे। इस वक्त दीन सिखाने वालों का लाजमी फरीज़ा है कि वो जोड़ने की बातें करें, तोड़ने की ना करें, वरना देखिए ये ईंटी पाँव पर पड़े ना तो खून निकल आता है। आज इंडिविजुअल बेसिस पे ऐसे ही हो रहा है, अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर दे। तो इसमें ख़ास तौर पे लफ्ज़ सफ़न हमें सफ़ की अहमियत भी बताता है। दिन में 5 बार उम्मत मुस्लिमा से सफ़ें बनवाई जाती हैं और उतने डिसऑर्गेनाइज हैं। अपने मुल्कों में तो हम एयरपोर्ट पे भी सफ़ ना बनाएं, और सिर्फ एयरपोर्ट बदलते ही जब जहाज़ से निकलते हैं तो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। इधर क्यों? इसलिए कि उधर वो बनवा लेते हैं, इधर कोई बनाता नहीं। इधर तो सफ़ भी बनी हो तो समझ नहीं आता ये ज़िगज़ैग है या स्ट्रेट है। तो बहरहाल यहाँ टीम वर्क की अहमियत भी मालूम हो रही है। फरिश्तों की भी सफ़ें होती हैं, परिंदों की भी सफ़ें होती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सफ़ की दुरुस्तगी में दिलों की दुरुस्तगी है, यानी सफ़ें सीधी रख लो तो दिल सीधे रहेंगे। जन्नती जन्नत में जब दाखिल होंगे तो इनकी 120 सफ़ें होंगी, 120 रोज़ होंगी, और इसमें से 80 यानी 80 सफ़ें उम्मत मोहम्मदी की होंगी। तो देखिए जन्नत में सफ़ें बन रही हैं तो दुनिया में नहीं, तो आज से नियत कीजिए, जहाँ भी आप किसी भी अपने ज़ाती काम के लिए खड़ी हों तो वहाँ कोशिश कीजिए कि अपनी बारी पे रहिए। देखिए ना, हक तलफी नहीं होती, वो बेचारा जो 15 मिनट से खड़ा है और आप पीछे से जाके झपट के आगे चली गई, अल्लाह हमें ऐसी बदअखलाकी से बचाए। फिर आगे आयत नंबर 5-7, गलबाए दीन की जिद्दोजहद और तारीख से इबरत। हज़रत मूसा और बनी इसराइल के नाते से यहाँ अल्लाह ताला ने दोबारा ये बात बता दी कि जब कौमें आपने नबियों की कदर नहीं जानती, अल्लाह उनके दिलों को टेढ़ा कर देता है। यही बात ईसा इब्ने मरियम के नाते से भी थी, और इसी में आप देखिए कि अल्लाह के नबी की आमद की बात भी मौजूद है। आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि पिछली किताबों में नबी का क्या जिक्र था, तो आप देख लीजिए आयत नंबर 6 के अंदर ये जुमला मौजूद है, क्या कि मिनत तौराती व मुबशरम बी रसूली याती मिम बाद इस्मुहु अहमद। यह अहमद लफ्ज़ हाईलाइट कर लें। नबी सल्लम का नाम तौरात और इंजील में अहमद आता था, ये उसका रेफरेंस आपको दिया गया। और इसके बाद फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु कुलूबहुम, ये अल्लाह की एक पकड़ है। इंग्लिश में आप कहते हैं ना टेट फॉर टेट, उर्दू में आप कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ भी वही है। ये मुहावरा अरबी का कि जब वो टेढ़े होते हैं ना तो अल्लाह भी उनको टेढ़ा करता है। इससे मुराद क्या है? नंबर एक, अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता। इंसान खुद सरकशी करता है, भटकता है, गुमराह होता है, नतीजे में दिल टेढ़ा हो जाता है। जब वो ये सारे काम करता है तो अल्लाह भी उसके लिए वैसा ही रास्ता आसान कर देता है। तुम जैसा हमारे साथ करोगे हम तुम्हारे साथ वैसा ही मामला करेंगे। तो इससे सीखा क्या है कि गुमराह होने से पहले अपने आप को सीधा करें। देखिए गाड़ी चलाने वाला जान के गलत रोड ले ले, नेविगेटर कह रहे कि कीप राइट और वो लेफ्ट ले ले, तो किधर पहुंचेगा? हम जानते बूझते जो गुनाह करते हैं ना, वो फिर हमें मजीद भटकाने का और मजीद गलत चीजों पे ले जाने का जरिया बनते हैं।